सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी के इस विशाल सत्संग के रूम में दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। करीब दो हफ्ते पहले 13 तारीख वाले रविवार सत्संग के बाद रवानगी हो गई, जहां देर रात मसूरी पहुंचना हुआ और एक दिन रुकने के बाद हिमाचल प्रदेश की यात्रा आरंभ हुई सोलन शहर से, और फिर अगले 10-11 दिन हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न इलाकों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और फिर पंजाब में 3 विशाल समागम हुए, और आखिर हरियाणा के टोहाणा शहर से होते हुए दिल्ली पहुंचना हुआ वापस। तो जहाँ जहाँ पर भी जाने के मौके मिले, उन पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ की श्रद्धा, भक्ति, भोलापन, सादगी देखने को मिले, अटूट अकीदे विश्वास देखने को मिले, और एक कृतज्ञता का भाव वो देखने को मिला। ऐसे दुर्गम स्थान जहाँ पर आना जाना भी इतना सरल नहीं है जैसा मैदानी इलाकों में होता है, मौसम के अपने तकाजे, उसके बावजूद भक्तों की लगन ऐसी एक मिसाल के रूप में देखने को मिली है। और उन इलाकों में दास साथ साथ जगह जगह पर जिक्र भी करता आ रहा है कि एक सोलन शहर को छोड़कर जहां 2 साल के बाद जाने का मौका मिला, उसके अलावा चाहे अगला पड़ाव बिलासपुर हिमाचल प्रदेश था या फिर सुंदरनगर का इलाका या फिर हमीरपुर या फिर जोगिंदरनगर या फिर कांगड़ा, चंबा, डलहौजी और उसके बाद पंजाब के शहर, तो हिमाचल प्रदेश के तकरीबन सभी स्थान ऐसे थे जहाँ पर बहुत लंबा अरसा हो गया था गए हुए, कहीं पर 11 साल, 10 साल, हमीरपुर में 17 साल के बाद, और पंजाब के जो शहर वो भी 16 बरस के बाद, एक 10 साल के बाद, एक 22 साल के बाद, तो इतने इतने लंबे अरसे के बाद वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और देखा कि उन इलाकों में भी ये सत्य का पैगाम दिया जा रहा है, किस तरह से ये परोपकार किए जा रहे हैं, किस तरह से सत्य का ज्ञान जीवन में उजागर करके जन्मों जन्मों की अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जा रहा है, और जिस अंधकार के कारण लोग भ्रमों में रहकर इस जीवन के सफ़र को बंधनों में रहकर तय करते चले आ रहे थे, तो जिस जिस को भी ये ज्ञान का उजाला प्राप्त हुआ वही अपने आप को धन्य सबको बता रहा है कि मैं धन्य हो गया हूँ, सही मायनों मेरे संसार मेरा संसार में आना सफल हो गया है, वरना ये भी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाती है। हीरे जैसा अमोलक जन्म मिला ये अज्ञानता में रहकर ही मैंने बिता देना था, जैसे लाखों करोड़ों बिता के चले जाते हैं, हमें भी सत्य का सामना नहीं होना था, हम भी केवल प्रभु के नाम से वाकिफ ही रहते, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों की कृपा हुई कि वो ज्ञान की नज़र दे दी, जिसके कारण नाम के आगे निकल गए, नामी की पहचान हो गई, इस परम अस्तित्व की पहचान हो गई, जिसे हम राम कह के भी पुकार रहे थे, जिसे अल्लाह और गॉड कह के भी पुकार रहे थे, जिसे हम अकाल पुरख कह के भी संबोधित कर रहे थे। ऐसे परम अस्तित्व का बोध हो गया इस आत्मा को, आत्मा धन हो गई, आत्मा को टिकाना मिल गया। इसके बंधन भ्रमों के मिट जाने के कारण समाप्त हो गए। तो इस तरह से जहाँ आत्मा के लिहाज से वो अपने आप को उसके कल्याण के कारण धन्य मान रहे थे, साथ ही साथ इसी उजाले के कारण जो भेद वाले भाव थे वो मिट गए हैं। कितनी कितनी मान्यताओं से युक्त, कितने कितने वहम भुलेखों में पड़े हुए लोग वहाँ जीते चले जा रहे हैं, और उनको भी ये सवेरा उनके जीवन में आया तो वो यही कह रहे हैं कि वाकई ही ये भी हमारे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया है जो हमारे जीवन को अब सरल बना दे रहा है। अब सरल महसूस होता है जीवन, क्योंकि अब सत्य का आधार है और भेद वाले भाव मिट गए हैं। आज तक किसी अंधकार के कारण हम भेद करते थे, हम अपने पराए की दीवारें खड़ी करते थे, हम जाति पाति की मान्यताओं से युक्त दीवारें खड़ी करते थे, हम ऊंच जात वाले और ये नीच जात वाले, इस तरह से हम नफरत करते थे, घृणा करते थे, अछूत कहते थे। आज हम इस स्थान के ऊपर मौजूद ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं, जहाँ पर महात्मा गांधी जी के जीवन का इतिहास के कुछ पन्ने जुड़े हुए हैं। जैसे अभी भी यहाँ के प्रबंधक महोदय ने और इन सज्जनों ने जहाँ अपना प्यार और आदर सत्कार उसकी अभिव्यक्ति दी, और ये अवसर ये मौका हमें दिया यहाँ मिल बैठकर ये सत्संग करने का, तो महात्मा गांधी जी भी की भी नज़रिया उनका भी भेद वाला नहीं। ये सारे संसार के मानव अपने हैं, कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। तो भक्तजन जो इस उजाले से युक्त हो जाते हैं वो भी यही मानते हैं, क्योंकि जान जाते हैं कि वाकई ही जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, कि जाति पाति की मान्यताओं से युक्त कितने कितने उपद्रव हो रहे हैं, कितने कितने शोषण होते चले आए हैं, कितने दमन होते चले आए हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने यह आवाज़ बुलंद की कि जिनको नीची जाति का कह के दुत्कारा जाता है, ये भी हरि के जन हैं, ये भी प्रभु के बंदे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जिसका भी जिक्र हुआ कि सारी वसुधा पे बसने वाले तमाम लोग इसी परमात्मा ईश्वर निराकार की संतान है, एक नूर से ही सारा जगत उपजा है। अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है, कि एक की ही खलकत सारी है, चाहे ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है हरिजन है, ये प्रभु परमात्मा की सब संतान है। लेकिन अज्ञानता ने भ्रम डाल दिए, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी हो गई, अभिमान और अहंकार में चूर हो गए और निकल पड़े दूसरों का दमन करने और जुल्म और सितम करने। इस प्रकार से महापुरुषों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तो यही इंसान को जागृति दी। अगर कबीर जी की वाणी हम पढ़ते सुनते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जेब तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो अवन बाट काहे नहीं आया, जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा। यानि कि इस जाति का अभिमान ये गर्व कहते हैं, इस ये बड़े विकारों को जन्म दे देता है। जाति का गर्व मत कर मूर्ख, मूर्ख भी कह दिया उसे, अहंकारी भी हो गया, मूर्ख भी हो गया, तो इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा, और कितने विकार पैदा हो जाते हैं, केवल अभिमान ही नहीं घृणा भी, نفرت بھی اور ساتھ ہی پھر ہنسا بھی، کیونکہ اگر نفرت آ گئی تو ہنسک تو ہوں گے ہی، ہنسا کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ اور ادھر مہاتما گاندھی جی اہنسا، جتنے بھی ہم گوتم بدھا جی مہاویر جی کا ذکر کرتے ہیں، اہنسا پرمو دھرما کہ ایک نان وائلنس، یہی ان کا نعرہ رہا اور یہی مارگ پر وہ خود چلے، ہنسا کے مارگ کو اپنایا نہیں، اور اہنسک رہ کے نان وائلنٹ رہ کر اتنی بڑی کرانتیاں جیون میں لے آئے۔ اس دیش کو آزادی دینے کے لیے کتنے تپ تیاگ کیے، کتنوں نے ان کا ساتھ دیا اور اسی مارگ پر چلتے چلے گئے۔ تو آج بھی یہاں پر اس گاندھی آشرم کے استھل کے اوپر، جو کہ ابھی ایک دن بیچ میں ہے، پھر 2 اکتوبر آ رہا ہے مہاتما گاندھی جی کا جنم اتسو۔ ویسے تو دھیان یہی آیا جب یہاں سوچنا دی 4 دن پہلے کہ 1 تاریخ کو یہاں ستسنگ رکھا جائے، لیکن جب داس سوچنا دے ہی رہا تھا کہ ایک مہاپرش پاس کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے 1 تاریخ تو ویروار ہے، یہاں سڑک تو ویر بازار والوں نے ہی ہمیں ہلنے جلنے نہیں دینا، تو اتنا بار سڑک پہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے پھر یہ 30 تاریخ ہی نشچت ہوئی۔ تو مہاتما گاندھی جی کا بھی جنم اتسو 2 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور ان کے پربھاؤ کہاں کہاں نہیں رہے ہیں۔ امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے جب ہم ان کے بایوگرافی پڑھتے ہیں یا ان کے جو وہ مینشنز ہیں جگہ جگہ پر کہ وہ پربھاوت ہوئے تو مہاتما گاندھی جی سے ہوئے، اسی لیے مارٹن لوتھر کنگ وہ بھی یہ رنگ نسل آدھار کے اوپر جو تفرقے ہو رہے تھے، جو ریشل ڈسکرمنیشنز ہو رہی تھی ان ملکوں میں، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں جہاں مہاتما گاندھی جی کو بھی اس طرح سے اتنا بڑا ایک جھٹکا لگا، جس کے کارن انہوں نے ٹھان لیا کہ یہ بھید بھاؤ سماپت ہونے چاہیے، اور ایسی ان کے جیون میں کرانتی آ گئی۔ تو اس طرح سے مارٹن لوتھر کنگ بھی، وہ بھی اسی طرح کی ہی ابھیویکتی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اثر مہاتما گاندھی جی کے پرنسپلز اور سوچ کا ہوا۔ اور ان کی بھی پنکتی داس اکثر دہراتا ہے جو مارٹن لوتھر کنگ نے کہی کہ آئی ول الاؤ نو باڈی ٹو ڈی گریڈ مائی سول بائی میکنگ می ہیٹ دیم۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس قدر میرے اوپر اثر ڈال دیں کہ میں نفرت کرنا شروع کر دوں، یعنی کہ کوئی میرے ساتھ بھی ایسا ویوہار کر رہا ہے۔ وہاں پر وہ ان کے منتو نہیں میں پورے ہونے دوں گا، ان کا منتو ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں میں بھی اس راستے پہ چل نکلوں، لیکن I will allow nobody، میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری آتما، میرے من، میری پرنسپل سے مجھے گرا دے۔ تو اس طرح سے ایسے پربھاؤ یہ مہاتما گاندھی جی کے رہے ہیں، کہاں کہاں تک رہے ہیں، اور آج بھی دنیا اس چیز کی قدر کرتی ہے جنہوں نے خود اس پرکار سے ایک سادگی اور نمرتا کو اپنایا۔ ان کے ہم بھجن جو ان کو پریے تھے، وہ بھی ہم لگاتار سنتے پڑھتے ہیں کہ ویشرم جن تو تینے کہیے پیڑ پڑائی جانے رے، پر دکھے اپکار کرے تو ہی من ابھیمان نہ آنے رے۔ ایک گجراتی بھاشا میں جو وہاں کے سنت مہاتما نے یہ بچن لکھے اور مہاتما گاندھی جی کو پریے، تو اس میں بھی یہی اب ایک ابھیویکتی ہو رہی ہے کہ ویشنو جن تو تینے کہیے پیڑ پر آئی جانے رہے، کہ جو پر پیڑا کو جانتا ہے اور اس پیڑا کو ہرنے کے لیے اپنے یوگدان دیتا ہے، اور اس پرکار سے پر اپکار کرے تو من ابھیمان نہ آنے رہے، کہ اپکار بھی کرتا ہے، دوسرے کی پیڑا ہرتا ہے، और इतनी देन देने के बावजूद भी फिर मन अभिमान ना हारने रहे, फिर मन में फिर भी अभिमान नहीं आने देता है, अकर्ता भाव होता है, कर्ता भाव नहीं होता है। इस तरह से ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, वो भी प्रमाण लगातार जीवन में हमें उनके देखने को मिले। और इस प्रकार से जितने भी महात्मा संत इस संसार में समय समय पे अवतरित हुए, तो उन्होंने भी इसी मार्ग पर चलते हुए औरों को भी यही मार्ग दर्शाया कि ये विनम्र भाव, ये हलीमी, ये ह्यूमिलिटी, ये हम्बलनेस, ये लाजिम है। एक दूसरों को सुकून देना, दूसरों को चैन देना, दूसरों के काम आना बगैर कोई गर्ज रखे हुए, इस प्रकार से प्रभु की सच्ची इबादत के नर पूजा, नर सेवा, नारायण पूजा कि इसके बंदों की सेवा, बंदों से प्यार, नारायण से प्यार करना साबित होता है। जैसीदास अक्सर कहता है कि प्रभु प्रेमी अपने आप को लोग कहलाना तो चाहते हैं, और वो कहलाना चाहते हैं उस आधार के ऊपर कि कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं और कर्मकांड कर लिए, कुछ रटन कर लिए, कुछ यात्राएं कर ली, कुछ स्नान कर लिए, ऐसी विधियां अपना ली और साबित हो गया कि हम प्रभु प्रेमी हैं। लेकिन ये भी महापुरुषों ने, कबीर जी जैसे संतों ने, नामदेव जी, कबीर जी इत्यादि, बुल्ले शाह जी इत्यादि, फरीद जी इत्यादि, इन सब ने ये भी साथ साथ इंसानों के सामने ये आईना रखा है कि वास्तविकता में प्रभु प्रेमी वही हुआ करता है जो इसके बंदों से प्यार करना जानता है। अगर इसके बंदों से प्यार नहीं है, घृणा नफरत का भाव है, इनका शोषण करने का भाव है, इनके ऊपर जुल्म सितम करने का भाव है, फिर तुम किसी लिहाज से भी प्रभु प्रेमी नहीं हो। जो कसौटी है, जो पैमाना है, उसके ऊपर तो तुम नहीं खरे उतरोगे। ये तुम्हारे अपनी गलत फहमी, खुश फहमियाँ हैं कि ये क्रियाएँ कर लेने तक तुम सोचते हो कि तुम प्रभु प्रेमी हो गए। चाहे नफरत करते रहो, चाहे शोषण करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, फिर भी तुम प्रभु प्रेमी हो। तो महापुरुष संत जनों के फैसले ये युगों युगों से मिले हैं, तो आज भी उन्हीं को दोहराया जा रहा है, आज भी उसी तरफ ही ध्यान दिलाया जा रहा है कि इस प्रकार से हमने भी अपने भाव वही बनाने हैं, और वही भाव हमारे बनते चले जाएंगे तभी दूसरों के ऊपर भी असर होता चला जाएगा। महात्मा गांधी जी की भी मशहूर वो पंक्ति कि बिकम द चेंज यू वॉन्ट टू सी, बिकम द चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपने से आरंभ करो। चेंज चेंज के दुहाई तो दे रहे हो, परिवर्तन की दुहाई तो दे रहे हो, यू बिकम द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी। जो बदलाव देखना चाहते हो वो अपने से आरंभ करो, अपने से वो यात्रा आरंभ करो। इस तरह से एक हर किसी को महापुरुषों संतों का संदेश यही रहा है कि हमने अपने आप को संवारना, सुधारना है, हमने उन मूल्यों को अपनाना है, हमने ऐसी फितरत बनानी है, हमने ऐसी सोच बनानी है, और फिर उस तरह से जीवन जीकर हमने औरों को भी प्रेरित करना है, और इस वातावरण को हमने सुंदर रूप देना है। जो वातावरण मिलवर्तन वाला है, जो प्यार वाला है, जो दया करुणा वाला है, जहाँ पर विभाजन नहीं है, जहाँ पर दीवारें दरारें नहीं हैं, जहाँ पर एकत्व का भाव है, जहाँ पर एक समदृष्टि है, जहाँ पर कोई क्रूरता कठोरता नहीं है, कोई धर्म, मजहब, जाति, रंग, नस्ल के आधार पर भाषाएं, प्रांतीयवाद, हदों सरहदों को आधार बनाकर कोई जुल्म सितम नहीं है, जो हिंसा, जो इतने इतने युद्ध हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग का एक और वाक्य याद आता है जो उन्होंने कहा कि मैनकाइंड शुड एंड वॉर्स बिफोर द वॉर्स एंड मैनकाइंड, कि ये सारी मानव जाति को ये जंगें समाप्त कर देनी चाहिए इससे पहले कि जंगें ही मानव जाति का नाम और निशान इस धरती से मिटा डालें. सो मैनकाइंड शुड एंड वॉर्स बिफोर द वॉर्स एंड मैनकाइंड. कि इस इंसान का वजूद ही इस धरती पे नज़र ना आए, जो अभी भी थोड़ी देर पहले परमाणु आणु इत्यादि इतने विस्फोटक हथियारों का, जो इतने आर्सनल्स, जो न्यूक्लियर आर्सनल्स का अंबार लग चुका है कि धरती को पता नहीं कितनी बार नष्ट किया जा सकता है, एक बार नहीं कितनी बार नष्ट किया जा सकता है. तो इसलिए यहाँ पर वो इस लिहाज से कह रहे हैं कि इससे पहले सारी मानव जाति का नामो निशान मिट जाए, यहाँ पर डायनासोर्स और पता नहीं कितनी ऐसे प्रभु की ये जीव जंतु और ऐसे यहाँ पर इंसानी जन्म देने से पहले जिनको पैदा किया इस धरती के ऊपर मालिक ने, वो भी कहाँ पर मर मिट गए, उनके नामो निशान नज़र नहीं आ रहे हैं. उनको पहले पैदा किया, इंसान तो कहीं बाद में जाकर इस धरती पे पैदा हुए. तो अब वो अवस्था ना आ जाए, वो स्थिति ना आ जाए कि फिर ये इंसान भी ना रहें और ये पशु जानवर ये भी नहीं रहेंगे जो सामान इंसान बना चुका है. तो इसलिए यहाँ पर यही वर्ड ऑफ कॉशन दिया जा रहा है कि मैनकाइंड शुड एंड वॉर्स, के हिंसा का रास्ता, ये जंगें, ये बारूद, ये एक अपने आप को ताकतवर साबित करने वाली प्रवृत्ति और दूसरों को कमज़ोर मानना भी और दूसरों की कमज़ोरी का लाभ भी उठाना, ये जो अक्सर चलता चला जा रहा है. तो कहते हैं कि ये रास्ता, ये सोच, ये हानिकारक है सारी मानव जाति के लिए, सारी ह्यूमैनिटी के लिए ये हानिकारक है. तो इसलिए हानि के रास्ते पे नहीं, हमने लाभ के रास्ते पे चलना है. चाहे कोई हुकूमत करने वाले हैं या कहीं पर भी उनके अहम रोल हैं, चाहे एक साधारण जनता का अंग है, इंसान साधारण रूप में विचरण कर रहे हैं, हर इकाई के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस दिशा की तरफ जाते हैं और किस तरह का वातावरण इस संसार में बनाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है. तो इसलिए ये महापुरुष संत जनों के संदेश, ये लगातार ये हर इंसान तक पहुँचाए गए हैं, युगों युगों से पहुँचाए गए हैं और आज भी वही संदेश और वही पैगाम ये पहुँचाया जा रहा है कि हमने सफ़र तय करना है, इस जीवन का प्यार के साथ तय करना है, हमने निम्रता के साथ तय करना है, हमने करुणा और दया के भाव के साथ तय करना है, हमने कहीं पर भी कठोरता और क्रूरता का सहारा नहीं लेना है, इस तरह से हमने मातम नहीं फैलाने हैं, हमने बर्बादियां नहीं करनी है, हमने आबाद करना है ये जहान. और जहान की का आबाद होना वो प्यार के कारण ही होगा, वो करुणा के कारण ही होगा, वो मिलवर्तन के कारण ही होगा, वो पीसफुल एग्जिस्टेंस के कारण ही होगा. इससे विपरीत, इससे हटकर जो भी देन दी जाएगी वो बर्बादी वाले योगदान है. तो इसलिए बर्बादी नहीं, इस धरती को आबाद रखना, ये गुलजार को खिलाए रखना, ये खिली हुई गुलजार बनी रहे ये धरती, उसके लिए ये शैतानी फितरत को तजना ज़रूरी है, एक हैवानियत के रास्ते को तजना ज़रूरी है, ये छोटी सोच को तजना ज़रूरी है, ये संकीर्णताएं और असहनशीलता को तजना ज़रूरी है. तब जाकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये धरती जन्नत बन सकती है, ये चारों तरफ के वातावरण सुखद बन सकते हैं, ये तभी उम्मीद जाग सकते हैं. और जो ऐसी फितरत, ऐसी नज़रिए, ऐसी अवस्था से युक्त हो चुके हैं वो भी आशा के किरण बनते हैं. जैसे आपकी मान्यताएं हैं, जैसे आप जिस नज़रिए से संसार को देख रहे हैं, जो एक अपनेपन का भाव है, वननेस, एकत्व का भाव जो मन में प्रबल है, तो ये भी एक आशा की किरण है कि वाकई ही अभी भी सब कुछ खो नहीं गया है, अभी भी कुछ कायम है, और ये जो कायम है इसको और फैलाव, मजबूती मिलती चली जाए, ताकि वो भी समय आए जब वाकई इस धरती के ऊपर स्वर्गमय सुकून वाला वातावरण हो, अमनोचैन वाला वातावरण हो, और इस तरह से इंसान इंसान का हितैषी बन के जीवन के सफ़र को तय करने वाला बने। तो अवसाद संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना कि दाता ऐसी कृपा करे, सबको ऐसी तौफीक बख्शे, ऐसी सुमति दे, सबको सम्मति दे भगवान, कि सबको सुमति दे दातार, सबको ऐसी सोझी मिले, सबको ऐसी समझ मिले, सब इस अंधकार से उभरें, इस गफलत से जगें, ताकि ये अपना भी उद्धार करने वाले बने और औरों के लिए भी इनका जीवन ये कल्याणकारी ये बन जाए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं की जा रही हैं, और यही देन भक्त जन, जैसे दास ने आरंभ में कहा कि सभी जगह पर ऐसी ही देन महापुरुष संत जन ये दे रहे हैं, चाहे मैदानी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे रेगिस्तानी इलाके हैं, जगह जगह पर यही संदेश दिए जा रहे हैं। किसी मुल्क में बस रहे हैं वहाँ पर भी यही पैगाम है, यही संदेश है, खुद अपने आप को इस रूप में पेश कर रहे हैं। और इस यात्रा में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की, तो वहाँ पर भी इसी तरह से यही लगन देखी, केवल शहर नहीं गांव में भी, कितने सड़कों से गुजरना हुआ, पहाड़ी इलाके, और अक्सर शाम के ही सफ़र थे, रात्रि के सफ़र थे, क्योंकि दिन को ही प्रोग्राम सर जगह पर थे और तकरीबन 3-4 बजे समाप्त होते थे और फिर यात्रा शुरू हो जाती थी अगले पड़ाव, और वो तकरीबन सारे ही सफ़र रात्रि के समय तय हुए। और रास्ते में कितनी जगहों पर अपने गांव के बाहर नीचे खाइयों में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, सड़क पर पहुंचे हैं थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद, और तकरीबन सभी जगह के ऊपर देर रात 11:15 ही पहुंचना हुआ। और जब पंजाब आए, पंजाब और ये आखिरी दो स्टेशन, तो ये तो हम दोनों जगह पर पहुंचे तो रात के 1 बजे हुए थे, 1:15 बजे हुए थे। और उसका कारण कि ये चंद स्थान जो दास ने गिनवाए, ये तो विधिवत रूप में ये तो निश्चित किए हुए थे, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 28-29 स्थान ऐसे थे जो रास्ते में ही जुड़ते चले गए। कहीं पर नए सत्संग भवन बने हैं, कहीं पर पुराने सत्संग भवन बने हैं और कहीं एक बार जाने का मौका नहीं मिला, कहीं गांव में देर रात गांव में 12:15 एंटर किए और सोचा थोड़े से महापुरुष होंगे, तो देखा उमड़ता हुआ सागर कि वहाँ पर हर गली, हर चौराहे, हर जगह पर, छतों के ऊपर, सब जगह महापुरुष और गांव के लोग भी अपना प्रेम प्रकट कर रहे। तो इस तरह से ये यात्रा भी जो अभी तय हुई, इस प्रकार से ये जगह जगह के ऊपर ऐसे ही उत्साह ये देखने को प्राप्त हुए हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और खुशी जाहिर करेगा, जो यहाँ नंकारी कॉलोनी के इतने करीब होने के बावजूद इस इलाके में बहुत कम सत्संग करने का अवसर मिलता है। कुछ बरस हो गए जब यहीं परमानंद से आगे मुखर्जी नगर की तरफ जाते हैं, तो दशहरा ग्राउंड में बड़े साल पहले सत्संग करने का मौका मिला, या फिर कहीं बुराड़ी के आगे संत नगर के इलाके में एक आध दफ़ा सत्संग करने का अवसर मिला, वरना तो दिल्ली के और इलाकों में तो सत्संग इस तरह से करने के मौके मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ नंकारी कॉलोनी हमारा समागम ग्राउंड या 8 नंबर ग्राउंड या हमारा मैरिज ग्राउंड, यहाँ पर सत्संग होते ही रहते हैं, तो ये यहाँ के प्रबंधक महोदयों ने, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और तकरीबन साल भर हो गया है जब से संदेश मिल रहे हैं कि कभी ऐसे यहाँ पर सत्संग का आयोजन हो, लेकिन समय ऐसा नहीं मिल पाया। और अभी यहाँ सज्जन जिक्र कर रहे थे और यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पर वो तस्वीरें देखने को मिलीं जहाँ पर महात्मा गांधी जिस स्थान पर रहते थे वो भी उसी तरह से भी बनी हुई, और अंदर तस्वीरें महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा जी की लगी हुई। और वो देख रहा था तो दास पिछले साल गुजरात दास को पोरबंदर भी जाने का मौका मिला था, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का वो स्थान स्थल जहाँ जन्मे पले। और इस प्रकार से कस्तूरबा जी और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में भी कुछ बरस पहले जाने का मौका मिला था। और जब यहाँ ज़िक्र हुआ तो ये मालूम ही नहीं कि इस तरह से गांधी जी यहाँ पर आए और कस्तूरबा जी, और ये इतिहास के लिहाज से भी यहाँ की महत्ता है। और यहाँ के ये प्रबंधक सज्जन कह रहे थे कि पहली दफ़ा दास का यहाँ आना हुआ तो दास के ध्यान में आया कि 70s में शायद दास इस प्रांगण में 2-3 दफ़ा आया था सत्यार्थी जी के फर्जंद के साथ, जहाँ पर यहाँ इनके कोई दोस्त रहते थे और उनके साथ आना जाना होता था। तो उस वक़्त यहाँ आते तो थे लेकिन इस प्रकार से ये मालूमियात नहीं थी। और अभी यहाँ आते ही जो उन्होंने प्यार और सत्कार दिया, और यहाँ जो स्कूल चल रहा है करीब 200 बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो इन्होंने भी आते सत्कार किया और ये प्रेम दिया। तो दास यही प्रार्थना करेगा कि इन बच्चों के लिए और तमाम ये जो सेवक संघ हैं या सर्वोदय है किसी रूप में भी हैं, या साउंड के जो यहाँ सज्जन बोले जो इस तरह से समाज की सेवा में योगदान दे रहे हैं, तो इस तरह से बहुत खुशी हासिल हुई। और दातार सबको सफलताएं दे ताकि जो कल्याणकारी मकसद हैं वो पूरे होते चले जाएं। सत्संग जी धन्यवाद।